जया दीदी को देखकर ईशान के चेहरे के कोमल भाव एकदम सख्त भाव में बदल गए। उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, दीदी। उसके बाद वो एक पल के लिए रुका, फिर बिना किसी भाव के आगे बोला, मेरी सिर्फ एक ही दीदी है। इतना कहकर उसने कुणाल को नीचे खड़ा किया और सीधे सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जया दीदी के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए, बाकी सब स्तब्ध से ईशान को देखते ही रह गए, जबकि ईशान लगभग सभी को नज़रअंदाज करते हुए तेज कदमों से चलते हुए सीधे अपने कमरे में चला गया। बेचारी कशिश, जो सबके आने से बहुत खुश थी, ईशान के यूं गुस्से में चले जाने से उसका मुंह लटक कर छोटा सा हो गया। उसने रजनी से कुछ कहा और किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो ट्रे लेकर बाहर आई और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। ईशान का मूड सुबह खराब था और अब एक बार फिर खराब हो गया था। वो कपड़े बदलकर कमरे में आया तो कशिश को कमरे में देखकर भी नज़रअंदाज करते हुए बालकनी में चला गया। कशिश ने बुरा सा मुंह बनाया और उसके पीछे पीछे जाते हुए उसे पुकारने लगी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, सुनिए, रुकिए तो सही मिश्रा जी। ऐसे ही जाने कितनी बार उसने ईशान को आवाज़ लगाई थी, पर ईशान ने उसकी आवाज़ को भी अनसुना कर दिया। उसके कदम बालकनी में आकर रुके। कशिश उसके बगल में रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई और नाराज़गी से गाल फुलाते हुए बोली, ओ मिश्रा जी, अब मैंने क्या कर दिया जो मुझसे मुंह फुलाए घूम रहे हो? मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रहे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। कशिश, जाओ यहाँ से, अभी मुझे अकेले रहना है, ईशान ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कशिश ने उदास चेहरा बनाया और बुझे स्वर में बोली, इतना नाराज़ है कि कशिश नाम से बुला रहे हैं मुझे? पर अभी मैंने कुछ भी नहीं किया सच्ची, मुझे भी नहीं पता था कि आज सब आने वाले हैं, मैंने नहीं बुलाया उन्हें, महादेव की सौगंध, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। उफ, कशिश की मासूमियत भरी प्यारी प्यारी बातें और भोली सूरत, यूं ईशान के नाराज़ होने पर बेचैनी से सफाई पेश करना और अपनी सच्चाई साबित करने के लिए महादेव की कसम खाना, कितना बचपना भरा था उसमें। जितनी प्यारी थी उतनी ही इनोसेंट और क्यूट भी लग रही थी उस वक्त। ईशान चाहकर भी उससे नाराज़ नहीं हो सका। उसने गहरी सांस छोड़ी और ट्रे से चाय का कप उठाते हुए बोला, नाराज़ नहीं हूँ मैं तुमसे। सच्ची? कशिश ने तुरंत ही सवाल किया और सितारों से जगमगाती आंखों से उसे देखने लगी। ईशान ने हामी भरी और सामने की तरफ घूम गया। कशिश उसके बगल में रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई और सामने देखते हुए बोली, मिश्रा जी, जया दीदी से आप इतने नाराज़ क्यों हैं? मैं किसी से नाराज़ नहीं। हर बात की तरह इस बार भी ईशान इस बात को मानने से मुकर गया। उसने बिना किसी भाव के जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर कशिश ने अपना छोटा सा सर उसकी तरफ घुमाया और गहरी निगाहों से उसे देखते हुए गंभीरता से बोली, झूठ बोलना आपको बिल्कुल भी नहीं आता, इसीलिए कोशिश भी मत कीजिए और अपने इस दोस्त को सच सच बताइए कि जया दीदी ने क्या किया है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, उस हिसाब से तो जब वो सब हुआ होगा तब भैया और दीदी दोनों छोटे रहे होंगे और उन्होंने वही किया होगा जो उनके मम्मी पापा ने करने को कहा होगा। इस हिसाब से उनकी कोई गलती तो नहीं हुई, पर आपकी नाराज़गी देखकर लगता है कि कुछ और भी बात है जो मैं नहीं जानती, तो मैं बस पूरी बात जानना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ छिपाएंगे नहीं मुझसे। इतना कहकर कशिश चुप हो गई। ईशान कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर निगाहें सामने की तरफ घुमाते हुए बोला, एक तो बात नहीं कशिश जो मैं तुम्हें बता दूँ, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो देखने वाले और सुनने वालों को बहुत छोटी और आम लगें, पर उनका असर बहुत गहरा हुआ है। एक वक्त था जब उन्होंने खुद कहा था कि उनका बस एक ही भाई है, बड़े पापा और बाकी सबके साथ जया दीदी और भैया ने भी पापा और हमसे दूरियां बना ली थीं। तुम समझ नहीं सकती कि एकदम से आपका पूरा परिवार आपसे पराया जैसा व्यवहार करने लगे तो कैसा लगता है। उस वक्त बहुत कुछ हुआ था और वक्त के साथ दूरियां बढ़ती ही चली गईं। भैया की शादी में पापा और हमें आने की इजाज़त नहीं थी, भाभी को जिस परिवार से मिलवाया गया उसमें हम शामिल नहीं थे, हम जैसे उस वक्त यहाँ किराएदार जैसे हो गए थे, उन्हें भी इतना बेगाना नहीं किया जाता जितना हमें किया गया था, परिवार का हिस्सा होते हुए हमें गैर बना दिया गया था, जिसे याद करता हूँ तो आज भी तकलीफ होती है मुझे। जया दीदी की जब शादी टूटी थी तो बड़े पापा, बड़ी मम्मी, दीदी, भैया सब ने पापा को बहुत बुरा भला कहा था, रिश्ते के टूटने के लिए उन्हें दोष दिया। पापा ने सबकी बातें खामोशी से सुनी और जब उन्होंने दीदी की शादी के लिए जीजा जी को चुना तब भी उन्हें बहुत बुरा भला सुनाया गया, पर देखो आज वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पापा की वजह से। दीदी ने कभी बात तक नहीं की पापा के साथ, उनके क्रियाकर्म में भी सिर्फ जीजा जी आए थे और कोई नहीं आया था। पता है कशिश, मैं भी तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जब वो सब हुआ तब भैया और दीदी भी छोटे थे, उन्हें अकल नहीं थी, उन्होंने वही किया जो उनके मम्मी पापा ने कहा और उसके लिए मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं।
उस वक्त मैं भी छोटा था, नहीं समझ पाता था कि अचानक सब हमसे नफरत क्यों करने लगे। पर वक्त के साथ मुझे सब समझ आने लगा, तो उन्हें भी समझ आया होगा, पर उनका व्यवहार कभी नहीं बदला। बचपन से लेकर आज तक उनके लिए हम पराए रहे, तो आज क्यों उन्हें हम अपने लगने लगे? जब इतने साल यूं ही निकाल लिए, तो आगे भी हम जी सकते हैं उनके बिना। किसी की जरूरत नहीं हमें, खासकर मुझे, और मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। जिन जिन की वजह से मैंने अपने पापा की आंखों में आंसू देखे हैं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूरी ना बनाऊं, तो बेहतर होगा कि तुम ये कोशिश करना बंद कर दो। इससे कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। उनके और मेरे बीच की दूरियों को खत्म करते करते तुम हमारे बीच एक गहरी खाई बना लोगी। उन बिखरे रिश्तों को संवारते संवारते हमारे रिश्ते की डोर को तोड़ दोगी, खो दोगी मुझे हमेशा हमेशा के लिए। बस इतना ही कहना है मुझे, आगे जो तुम्हें ठीक लगे करो। ईशान अपना फैसला सुना चुका था। सिर्फ फैसला नहीं सुनाया था, बल्कि उसने कशिश को आगाह भी किया था और आगे के परिणाम के बारे में बताते हुए फैसला उस पर छोड़ दिया था।